ओम शांति। हम सभी ईस्टर्न जोन के भाई बहने, ईस्टर्न जोन से मुझे बहुत प्यार है क्योंकि ईस्टर्न जोन में सेवा करने का बाबा ने बहुत सुंदर चांस इस आत्मा को दिया था। जब ईस्टर्न जोन में कहीं भी बाबा का संदेश नहीं था, जहां के उद्गम में साथ होता है वहां स्वतः ही प्यार होता है। और देखिए बाबा की बलिहारी है कि आप सबके सामने प्यारे बाबा ने जो वाणी चलाई, उस दिन कौन सा दिन था? वैलेंटाइन डे था। वैलेंटाइन डे को ही हम प्यार का दिवस कह के बाबा बुलाता है, और ऐसे प्यार के दिवस पर स्वयं प्यार का सागर बाबा आकर के हम बच्चों पर अपना असीम प्यार उंडेल रहे थे। और जिससे प्यार होता है उसके समान बनना बहुत आसान होता है, हमेशा स्वाभाविक होता है। जिससे आपको प्यार होगा, जैसे कभी भी आप किसी क्लास के स्टूडेंट्स को देखिए, वो वैसे ही होते हैं जैसे उनकी टीचर होती है। मुझे अपना याद है जब आज से 42 वर्ष पहले दिल्ली में रजौरी गार्डन में मुजात्मा का जन्म हुआ था, और 18 जनवरी का दिन था वो। और पहले ही दिन जब क्लास में जाकर योग के लिए बिठा दिया गया, केवल इतना कहकर कि आज तो मौन दिवस है हमारा, इसलिए आपको कोर्स तो आज नहीं शुरू करा सकते, लेकिन ये संकल्प करके आप क्लास में बैठे। मेरा 30 सेकंड का ही कोर्स हुआ था, 3 सेंटेंस बहन ने सुनाए थे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य ज्योति स्वरूप और शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा। बस इतना ही कोर्स कराया था और क्लास में बिठा दिया गया। और जब बहन की दृष्टि पड़ी, सबसे पीछे बैठा था मैं, तो दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा कि बहुत एयर कंडीशन की जैसी ठंडी हवा होती है, ऐसी वाइब्रेशंस उनके द्वारा एमिनेट हो रही थी। और बाल्यकाल से साधु सन्यासी गोदी में पला होने के कारण मुझे इस बात का आभास था कि जो सच्चे तपस्वी होते हैं उच्च क्वालिटी के, वो इस प्रकार शीतल वाइब्रेशंस एमिनेट करते हैं। और जैसे मैंने संकल्प किया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, चैतन्य ज्योति बिंदु स्वरूप, बस इतना संकल्प आते ही मुझे अचानक ऐसा लगा कि मेरा शरीर तो गया और मैं एक लाइट के आकार में स्थित हो गया हूँ और ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर दिया। यानी पहले दिन बाबा ने दृष्टि देकर इस आत्मा को वतन में बुला लिया, और एक घंटा वतन का दृश्य देखता रहा। सूक्ष्म वतन भी बड़े प्यार से देखा, मूल वतन भी देखा, और इस सृष्टि को योगदान देने का जो अपना संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप जिसे हम कहते हैं, वह भी देखा। हाय तो हम सब परिचित हैं अच्छी तरह से, रोज सुबह अमृत वेले वतन में जाते हैं, बाबा के पास बैठते हैं, और विश्व के पांचों खंडों की, कि बाबा कहता है ग्लोब को इमर्ज करे उसकी सेवा करो, तो पांचों खंडों की भी सेवा करते हैं, पांचों तत्वों की भी सेवा करते हैं। अब तो हमारी ऐसी योग की पराकाष्ठा हो गई है, लेकिन पहले ही दिन किसी व्यक्ति को उसका संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप दिखा दिया जाए, वो जानता भी ना हो कि ये संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप क्या होता है, तो कैसा उसको अतिन्द्रिय सुख का अनुभव होता होगा। ऐसे दृष्टि से जन्म हुआ। और फिर जब बाबा को पहली बार मिलने के लिए मधुबन में आए, एक मास के अंदर ही मुझे चांस मिल गया। उसमें भारतीय वायुसेना में एज ए पायलट अफसर सेवा करते थे, वैसे भी हवाई जहाज में उड़ने की आदत थी, लेकिन ये जो सूक्ष्म वतन में और ऊपर उड़ने का जो अनुभव था वो टोटली उससे डिफरेंट था, क्योंकि एयरफोर्स में हमारा लक्ष्य होता था टू टच द स्काई विद ग्लोरी, यानी आसमान को छू के आओ और बड़ा अपने आप को दिव्य समझो, ग्लोरीफाइड समझो। लेकिन यहाँ तो जर्नी जब पहली शुरू होती है तो आसमान से ऊपर चले जाते हैं, चांद तारागण की दुनिया से भी ऊपर जाते हैं, और जाते भी कितनी मस्ती से हैं। अभी आप गीत सुन रहे थे मेरे बाबा का, यानी सीधे परम धाम ही उड़ा कर ले जाता है बाबा, और हम हंसते गाते झूमते हुए जाते हैं। वैसे किसी को कहा जाए कि ऊपर जाना है क्या, तो कहेंगे मैं ही बचाऊंगा और कोई नहीं मिला। हम स्वर्ग में एक सीट खाली है ड्रामा करते हैं ना, सबने देखा है स्वर्ग में एक सीट खाली है ड्रामा, किस किसने देखा जरा हाथ उठाओ। तो कैसे वो नारद जाता है और बड़ी उम्मीद से जाता है वो, और धर्मराज को कह के जाता है कि देखिए मेरे ये जो हमारे कलयुगी संसार के लोग हैं बड़े बेचारे दुखी और अशांत हैं, भगवान मुझे आज्ञा दो तो मैं उनको न्योता देकर आता हूँ और आप उन्हें स्वर्ग में भेजना। तो धर्मराज मुस्कुराने लगे कि नारद क्या जाने नीचे के लोग कैसे हैं, कि अच्छा स्वर्ग में एक सीट खाली है नारद, जाओ किसी एक को बुला के ले आओ तो मैं देखूं कि हाँ सचमुच नरक के लोग ऊपर आना चाहते हैं क्या। कहाँ कहाँ जाता है बेचारा, वो बुढ़िया के पास जाता है तो वो भी नहीं कि मैं ही रह गई हूँ क्या, नौजवान के पास जाता है, अफसर के पास जाता है, सबके पास जाता है बारी बारी, और कोई भी जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन हम बाबा के बच्चे सदा इसी खुशी में झूमते रहते हैं कि मैं अपने प्यारे बाबा के घर, अपने घर परमधाम जाऊंगा, और नाचते गाते रहते हैं उसको याद करते हुए। और जब सचमुच वहां पहुंच जाते हैं तो कितना सुखद साइलेंस का अनुभव होता है। साइलेंस सुखद हो सकती है ये आभास ही इस परिवार में आने के बाद होता है। जैसे मैं जब आया था पहले दिन और मैंने देखा है 60-70 लोग क्लास में चुप करके बैठे हैं, मुझे तो ऐसा लगा था कि जैसे इनका कोई मर गया हो। मैंने टीचर को ऐसे ही कहा कि दीदी क्या बात है आज सब चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई मर गया क्या? और वो क्या कहे बेचारी दीदी की, बाबा का दिन है, क्योंकि एकदम साइलेंस को देखकर बड़ा विचित्र सा लगता है। हम लोग बाहर आवाज की दुनिया वाले लोग हैं, और मिलिट्री वाले तो बहुत जोर से चिल्लाते हैं, परेड करते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन जब बैठे और एक घंटा परमधाम में चले गए और वतन से नीचे लौट कर आए सुखद साइलेंस का अनुभव करने के बाद और भट्टी पूरी हुई तो लोग बात करने लगे। 6:30 बजे का समय था, उस समय सुबह से योग कर रहे थे, तो जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो मुझे लगा कि लोग क्या चुप नहीं रह सकते, क्यों बोल रहे हैं ये? क्योंकि जब गहन सुखद साइलेंस की स्थिति का अनुभव हो जाता है फिर आवाज की दुनिया अच्छी नहीं लगती। पहले ही दिन जब ऐसा गहन अनुभव होता है तो फिर जीवन का परिवर्तन तो स्वाभाविक है, और वायुसेना में रहते हुए एक ऐसा संपूर्ण परिवर्तन था, कहां तो नॉन वेजिटेरियन भाषा बोलने वाले और कहां मीठी मीठी मधुर वाणी बोलने वाले लोग, ऐसा परिवर्तन था। और जब मधुबन में आए तो फिर एक और बात थी, क्योंकि जब पहले दिन दीदी ने वतन में भेज दिया तो अगले दिन में दीदी को ऐसे ऐसे देख रहा था, कहती क्या देख रहा है भाई, कि कल तो आपने दृष्टि दी भंजी में ऊपर चला गया, आज तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो कहती है वो दृष्टि देने वाला कल ये दीदी नहीं थी, कल बाबा ने आपको दृष्टि दी तब आप ऊपर चले गए। तो मैंने कहा फिर उस बाबा के पास ही ले चलो, क्योंकि उसकी दृष्टि तो बहुत सुखद थी। तो फिर मौका भी मिल गया, मधुबन पहुंचे भी हमारे रामलोचन भाई, जो आपको बहुत सुंदर प्यार से भोजन खिलाते हैं और बाबा को ब्रह्मा भोजन कराते हैं। तो उस दिन होली का दिन था, और होली वाले दिन बाबा अपने कमरे में आया करते थे। तब ये शांति वन भी नहीं था, ज्ञान सरोवर भी नहीं था, और पांडव भवन भी, पांडव ना ओम शांति भवन था, और पांडव भवन का मेडिटेशन हॉल भी नहीं था, वो 74 में बना है। पांडव भवन बहुत साधारण सा था और नीचे कच्ची जमीन होती थी, फर्श भी नहीं था आंगन में, और एक ही हॉल था जिसे आज हम हिस्ट्री हॉल कहते हैं, आज तो हम डायमंड हॉल में बैठते हैं, और तब हिस्ट्री हॉल को, जिसे अब हमारा उस समय जो हॉल था उसे हम हिस्ट्री हॉल कह देते हैं, कितना छोटा हॉल है वो। लेकिन होली की विशेषता थी बाबा अपने कमरे में आया करता था। बाबा कमरे में क्या क्या है, सबने देखा बाबा कमरा क्या क्या है बाबा के रूम में? बाबा का जो ओरिजिनल कमरा है मधुबन में उसमें क्या क्या है, तो क्या है आप लोग देखा इस बार जो ऊपर गए थे रात उठाओ? हाँ बोलिए क्या क्या देखा बाबा के रूम में, क्या देखा? बेड और हाँ जी दो ही चीजें हैं, एक बाबा का बेड है और एक बाबा की गद्दी बिछी हुई है जिस पर बाबा बैठकर पत्र लिखते थे, और बीच में बाबा की ट्रांसलाइट है। और जब हम गए तो उस दिन बाबा अपनी गद्दी पर, दादी गुलजार बाबा की गद्दी जो वहां बिछी हुई है उस पर बैठी थी, और उन दिनों पार्टी 10-15 की पार्टी बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी। आजकल دس پندرہ ہزار کو بھی بڑی پارٹی نہیں مانتے. آپ دیکھیے آپ کا زون آیا ہے 17,000 لوگ تو آپ کے زون کے ہی آ گئے. مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ایسٹرن زون سب سے بڑا زون ہے. 17,000 لوگ آج تک کسی زون کے بھی مدھوبن میں نہیں آئے. اتہاس ہے آپ کا یہ. آپ تالی بجا سکتے ہیں اس کے لیے. یہ ایک بہت بڑی اپلبدھی ہے کہ ہمارے پوروانچل سے سارے لوگ آئے اور سب سے ادھک سنکھیا میں آ جائیں. سب سے دور ہے, ہم لوگ پشچم میں بیٹھے ہیں, آپ لوگ پورو سے آئے ہیں, لیکن اتنی بڑی سنکھیا میں آئے تو مدھوبن والے بہت خوش ہو رہے تھے. مجھے تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی. دیکھیے ہمارے پوروتر پرانتوں سے, پورو کے پرانتوں سے اور دکشن سے, تمل ناڈو سے بھائی بہنیں آئے اور سب ملا کر کے 17,000 بابا کے بچے آ گئے. پہلے پہلے دن جب مجھے وہاں جا کر سیوا کا اوسر ملتا تو پہلے دن ہی ساتھ سپترشی مل گئے تھے کورس کرانے کے لیے, لیکن آج تو 17,000 لوگ آئے ہیں. تو مدھوبن کی بات کر رہا تھا کہ مدھوبن میں ہولی والے دن بابا اپنے کمرے میں بابا کی گدی پر گلزار دادی بیٹھتی تھی اور آیا کرتے تھے. یہ 72 کی بات ہے, مارچ کی. اور رام لوچن بھائی آئے, بھائی کون ہے ایئر فورس کا پائلٹ سر اشوک بھائی کون ہے؟ تو میں نے بولا میں ہی ہوں. روم میں آ کر بولے کہ بھگوان کو ملنا ہے کہ ضرور ملنا ہے, آ جاؤ. اور آ کر مجھے وہ بابا کمرے میں سے دھکیل سا دیا اس نے, جاؤ بھائی سامنے بیٹھو, وہ بابا بیٹھا ہوا ہے. اب ایک مہینے کا اسٹوڈینٹ ہو وہ کتنا پہچانتا ہوگا. میں نے پہلے دھیان سے دور سے دیکھا کہ بھائی دیکھو برہما کماری کا بابا جو ہے وہ ساڑی پہنتا ہے. سردار جیسی بات ہوگی نا. ایک بار سچ مچ ڈائمنڈ ہال میں بابا آئے ہوئے تھے, اور اتنا بڑا ڈائمنڈ ہال ہے تو نیچرلی بہت دور بیٹھتے ہیں. تو پہلے ہم لوگوں نے بیچ میں نا ایک ایسے راستہ بنا رکھا تھا, تو بابا بچوں کے بیچ میں چل کر جاتے تھے, ایسے گھوم کر ایسے آتے تھے گدی سے, بابا کو لے کے جاتی دادی پرکاش منی شروع شروع میں جب ڈائمنڈ ہال بنا. تو ایک بار ایک سردار جی آئے تھے, انہوں نے دیکھا بابا کو, بہت خوش ہوئے. بات جا کے انداز سنا رہے تھے کلاس میں, دیدی میں تو سرگ سے ہو کے آیا, سچی سب کچھ سرگ لگا اسے, اور خود رب نو دیکھ کے آیا, بھگوان کو دیکھ کے آیا, میں سرگ میں سے ہو کر آ رہا ہوں. مگر ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی. تو پوچھا کیا سمجھ نہیں آیا؟ کہ تھی بابے نو ساڑی کیوں پہنا دیتے ہو, بھگوان کو بابا کا ساڑی کیوں پہنا دیتے؟ تو میرا بھی ویسے سردار جیسا خیال تھا. پہلی پہلی بار آیا اور دیکھا, ماتا جی خوش ہو رہی کہ بھگوان ساڑی پہنتا, دادی ساڑی پہنتی. خیر, اور دیکھا میں نے کہ دادی جی بیٹھی ہوئی ہیں, اور ان کے چہرے سے دیکھتے ہی مجھے آبھاس ہو گیا کہ جب بابا آتے ہیں تو بابا کا چہرہ آپ دیکھتے ہیں کیسا چینج ہوتا ہے. تو چہرے سے دیکھ کے تو بڑا سکھد آبھاس ہو رہا تھا. ہم لوگ جیسے بھکتی کرتے رہے بچپن سے, اور دیکھتے ہیں فلمیں, رام کو دکھاتے ہیں, شری کرشن کو دکھاتے ہیں, وشنو کو دکھاتے ہیں, تو ان کے چہرے میں کتنی سندر بھویتا ہوتی ہے اور ایک چمک ہوتی ہے. وہ چمک تو بابا کی اسپشٹ دکھائی دیتی ہے, لیکن بس اتنے ہونے سے تو تسلی نہیں ہوتی. تو میں بیٹھ گیا جا کر, میرے سامنے ایک بہن بیٹھی ہوئی تھی اور بابا اس کو درشٹی دے رہے تھے. ساتھ میں ایک بہت بڑا سیٹھ بیٹھا ہوا تھا, مارواڑی ٹوپی لگائے ہوئے. پہلی بار کی ملاقات سنا رہا ہوں آپ کو, کہ پہلی ملاقات سبھی کی اپنی اپنی ہوتی ہے. آپ نے تو ویلنٹائن ڈے پر بہت لوگوں نے پہلی ملاقات کی ہوگی. تو بہن سنا رہی تھی کہ بابا یہ بمبئی کا بہت بڑا سیٹھ ہے, اس کی رائس مل ہے, فلانا ہے, جیسے کوئی اربوپتی ہوتا ہے اس زمانے میں جب یگ کی شروعات تھی. کتنے بڑے آدمی کو لانا ایک بہت بڑی اپلبدھی تھی اس بہن کے لیے. لیکن میں دیکھا بابا ایسے آرام سے اس بہن کو درشٹی دے رہا ہے اور اس کو دیکھ ہی نہیں رہا, وہ بیٹھا ہے سیٹ ادھر, بابا نے اس کو دیکھا بھی نہیں. تو پہلا امپریشن میں لے رہا ہوں کہ برہما کماری کا جو بابا ہے, بھگوان ہے, وہ پیسے والے سے پربھاوت نہیں ہوتا. ایک نیا آدمی دیکھتا ہے بھگوان کی اسسمنٹ کرنے کی دادی میں بھگوان آیا ہوا ہے, کیسے ہو, کیول ایکشن سے ہی انداز کیا جا سکتا ہے. اور جب خود ساری مہیما کر لی بابا نے, بہن نے بابا کی, تو بابا نے سیٹ کی, بابا نے ایک سیب اٹھایا اور اس کو دے دیا. اور اسی وقت سیٹ کو معلوم پڑا کہ بھگوان کے ہاتھ سے سیب ملا ہے. اب تھا تو بےچارا کچرا آدھا گیانی تھا, اس لیے بابا اس کو ویسے نہیں دیکھ رہے تھے جیسے بچوں کو دیکھتا ہے بابا. اٹھا وہ اور ساشٹانگ دنڈوت کیا اس نے بڑی جور سے, تھینک یو تھینک یو تھینک یو کر رہا اور لیٹ کر کے پرنام کر کے چلا گیا بابا. پھر بھی بابا نے اس کو نہیں دیکھا, بس اس بہن کو ہی دیکھتے رہے بابا. وہ بہن ایسی سوکھی کانٹے جیسی تھی, بالکل ہڈیاں دکھائی دیتی تھی. بمبے میں تھی نیچرلی, اس زمانے میں تو یگ بہت غریبی سے گزرتا تھا, आदि प्रकाशमणि भी शुरू शुरू में 10 नया पैसा टिकट का बचाने के लिए 10-10 किलोमीटर चला करती थी बम्बई में रहते हुए। ये बहन भी ऐसी होगी, सुबह खाना खा के निकलती होगी, रात को आती होगी, एक ही बार खाना खाती होगी, इसलिए एकदम सुखी हुई थी। तो मैं देख रहा पीछे से और पहली बार भगवान के मुख से कोई शब्द निकला। बाबा बड़े प्यार से पूछते हैं, बच्ची ये शरीर किसका है? बाबा भी देख रहा था उसको ध्यान से। तो कहती, बाबा आपका है, समर्पित ब्रह्मा कुमारी ये क्या कह सकती? पक्का? जी बाबा आपका है। तो बाप की अमानत में देखिए पहला शब्द जो भगवान के मुख से निकलता है, पहला सेंटेंस, तो बाप की अमानत में खयानत डालने का तुमको किसने अधिकार दिया? आमतौर पर लौकिक कोई व्यक्ति होता है तो झाड़ता है, खाने खा दी क्या, ऐसी कुछ ना कुछ बोल देता है। लेकिन भगवान की भाषा देखिए, इतना मधुरता से और ऐसे जिगर से प्यार करता हुआ बड़े प्यार से पूछता है, बच्ची तो बाप की अमानत में खयानत डालने का तुमको किसने अधिकार दिया है? वो बेचारी थोड़ा घबराई और फिर देखती रही बाबा की दृष्टि लेती रही। फिर बाबा प्यार से कहता है, देखो बच्ची तुमको ब्रह्मा भोजन बनाना आता है? ये कैसे पालता है प्यार से बच्चों को? जी बाबा, कल से दिन में 2 बार बड़े प्यार से ब्रह्मा भोजन बनाना और फिर बाप दादा को स्वीकार कराना, उसे मालूम था भगवान को स्वीकार कराए बगैर खाएगी कहाँ, और फिर इस रथ को स्वीकार कराना। चलिए तो बेटो, प्रकार प्यारे बाबा ने उस बहन को बहा सुंदर दृष्टि दी और डोली दी और शिक्षा भी दे दी कि ईश्वरीय सेवा के लिए शरीर समर्पित है, इसका पूरा ध्यान रखना है, दोनों टाइम ब्रह्म भोजन स्वीकार करना है। ऐसे प्यार से पालता है हमारा बाबा हमें। वो बहन भी उठ के चली गई, अब हम अकेले रह गए वहाँ, एक बाबा और एक बाबा का बच्चा, तीसरा न कोई। तो जैसे ही सबके आगे बाबा के सामने बैठे, अब एक ही लेवल पर आमने सामने आप बैठे हैं, अभी आप देखिए डायमंड हॉल में कितनी दूर कुर्सियां होती हैं, 50-60 फुट की दूरी तो रहती ही है और लास्ट में तो 400 फुट हो जाती है। भले हरी है उस जैसी स्क्रीन की, टीवी स्क्रीन की जितना साफ बाबा को दिखाती है साइंस के साधनों की, बलिहारी कहेंगे। और बाबा के पास जैसे ही जाके बैठे और बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया, तो दृष्टि पड़ते ही तब तक आत्मस्वरूप में तो सिद्ध हो ही गए थे, देख रहे थे कि कैसे रूहानी बाप अपने रूहानी बच्चों से प्यार से बात करते हैं। और वो देखकर जैसे ही बैठे तो मंत्रमुग्ध होकर हम देखते रहे थे, जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ी एकदम पहले जैसा अनुभव, जैसे एकदम न्यारे एक लाइट के आकार में फर्शता स्वरूप में बाबा ने स्थित कर दिया। ऊपर नहीं गया मैं, क्यों? क्योंकि ऊपर वाला तो नीचे आया हुआ था, इसलिए मुझे ऊपर जाने की तो कोई जरूरत नहीं थी। तो बड़े प्यार से बाबा ने दृष्टि देना शुरू किया, बिल्कुल जैसे पहले दिन का अनुभव था, संपूर्ण फर्शता स्वरूप का अनुभव, एक गहन शांति का, फिर बाबा दृष्टि दिए जा रहा है, फिर आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो जैसे आपका चेहरा भी दिखाई देता है और मन भी गदगद हो जाता है, रोम रोम आपका खिल जाता है, ऐसा बहुत अतीन्द्र सुख का अनुभव बाबा करा रहे थे। और दिल से निकल रहा था, पाना था सो पा लिया, पाना था सो पा लिया। इन्हीं दृष्टि से निहाल, नैनों से निहाल करना, ये हमारे बाबा की सबसे बड़ी कमाल है। जो लोग साकार की पालना पाए हुए हैं वो सभी ऐसा ही सुनाते हैं, हमारी जयंती बहन है, जगदीश भाई जी है, कि बाबा या निर्वैर भाई साहब है, बस दृष्टि पड़ती थी बाबा की और एकदम निहाल कर देते थे बाबा। ऐसा ही साकार जैसा अनुभव बाबा ने कराया। और फिर उसके बाद तो सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, और पहली पहली सेवा हमको मिली ऋषिकेश में, महात्माओं की सेवा करनी थी। तो हमने अपनी टीचर ने कहा कि चलो ऋषिकेश चलेंगे, अशोक भाई वहां सेवा करेंगे। मैंने कहा दीदी मेरे को तो ज्ञान सुनाना कहाँ आता है, मैं तो एयरफोर्स का अफसर हूँ, महात्माओं की कैसे ज्ञान सुनाएंगे, क्या मैं तुमको म्यूजियम दिखाती हूँ। तो जैसा म्यूजियम समझाया था हमको सुदेश दीदी ने उस समय, आजकल वो जर्मनी में है, वैसा ही आज भी हम समझाते हैं। इतना टीचर का प्रभाव होता है स्टूडेंट के ऊपर, जैसा जैसा रचता वैसी रचना होती है। और फिर वहां जाकर खूब महात्माओं की सेवा हुई, बड़ा आनंद आया। और वहां से फिर लौट कर आए तो साल भर बाद ट्रांसफर हुआ आसाम में। उस समय आसाम में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में किसी भी स्टेट में कोई भी सेंटर नहीं था। और जब पहली बार वहां पहुंचते हैं तो उसके बारे में लोगों की अजीब अजीब मतें होती हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी रास्ता चेंज करती है, लोग बहुत बाढ़ आती है वहां, लोग पेड़ पर मचान बना के रहते हैं, ऐसी ऐसी बातें थी। लेकिन जब वहां पहुंचे तो बाबा ने एक बहुत सुंदर भवन दिया था, एयरफोर्स स्टेशन नया नया बना था। और सुबह सुबह ही 4 बजे वहां रोशनी हो जाती है, अमृत वेला किया, मुरली पढ़ी, ऑफिस गए। और बाबा ने मुरली में कहा कि शिव के मंदिर में जाके संदेश दो। तो मैंने जाके ऑफिस में पूछा, भाई यहाँ कोई शिव का मंदिर है आसपास? तो कहने लगे, सर मैं छबुआ में, एयरफोर्स स्टेशन छबुआ कहते हैं उसे, वहां थे। कहते सर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक तीनसुखिया शहर है, उस शहर के परले कोने पर एक बहुत सुंदर नया नया शिव का मंदिर बना है और बहुत मशहूर है वो। मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छा है। जैसे 1 बजा छुट्टी हुई ऑफिस से, मोटरसाइकिल उठाई और हम सीधे तीनसुखिया चले गए। और वहां का शिव का मंदिर देखा, बहुत सुंदर शिवधाम उसका नाम था, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ था। हैं जी, अरे तो बहुत अच्छी बात है, तो वहीं से ज्ञान आपको मिला, बहुत अच्छी बात है। तो तिनसुकिया हमारी पहली सेवा भूमि है, कर्म भूमि कहता हूँ उसे मैं। तो वहां जाकर के शिव के मंदिर में गए और पुजारी से बात करे तो वहां बहुत से लोग आ गए कि आप राजयोग जानते हैं, आपको योग कराना सिखाना आता है कि क्यों नहीं आता? तो ठीक है हमें योग सिखाइए। तो पहले दिन बाबा ने 7-8 लोगों का एक बड़ा अच्छा ग्रुप था वो ग्रुप दिया, और तब से वहां सेवा की फाउंडेशन पड़ी। ये ईश्वरीय ज्ञान का जीवन ऐसा जीवन है कि एक बार आप सेवा में लग जाते हैं, यानी दूसरों के दुखड़े दूर करना शुरू कर देते हैं, तो आपके दुखड़े अपने आप दूर हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में हम गीत सुनते हैं ना, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जाते जग में भलाई का काम, ऐसा सुनते हैं ना। तो जब आप इस ईश्वरी सेवा में लगते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है और बहुत खुशी होती है जब पहले दिन आठ जिज्ञासु किसी को मिल जाए। और फिर वहां गीता पाठशाला बनी, फिर सेंटर बन गया, फिर रोज हम डिब्रूगढ़, फिर बाबा ने मुरली में कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी के पास जाकर बाबा का संदेश दो। तो रोज आधे आधे में थे हम, छबुआ में 20 किलोमीटर इधर तिनसुकिया, 30 किलोमीटर इधर डिब्रूगढ़ था। तो पहले तिनसुकिया जाना, वहां क्लास के आना, फिर डिब्रूगढ़ जाना और वहां ब्रह्मपुत्र नदी किनारे देखना कौन आत्मा इच्छुक है और फिर उसको ज्ञान देना। तो दो स्थान इकट्ठे डेवलप हुए। फिर फौज में नौकरी का ये सुख होता है कि एयरफोर्स में आपको जहाज फ्री मिलते हैं, कहीं भी जाना हो तो कभी तेजपुर जाना, कोई जहाज तेजपुर जा रहा है, कभी कोई कहीं जा रहा है। तो हवाई जहाज में एक छोटी सी एग्जीबिशन का सेट लेके चले जाते थे, कोई टिकट तो लगती नहीं थी। और सभी स्टेट्स में सेवा करने का बहुत सुंदर बाबा ने चांस दिया। सात बहनें कहलाती हैं, सात स्टेट्स वहां की जो हैं, सभी सात स्टेट्स में, चाहे वो मणिपुर हो, मिजोरम हो, त्रिपुरा हो, किसी भी अरुणाचल प्रदेश हो, सब जगह जाकर सेवा करने का बहुत अच्छा चांस मिला। तो इसलिए मुझे वो सारी स्टेट्स अपनी स्टेट्स लगती हैं, क्योंकि पहली बार में सभी जाकर के सबकी अपनी संस्कृतियां हैं, विविधता है, लेकिन उस विविधता में ही भारत की विशेषता है हमारी, बड़ा सुंदर अलग अलग कलर्स का गुलदस्ता बन जाता है। तो वहां सभी स्टेट्स की सेवा करने का अवसर मिला। फिर वहां से ट्रांसफर आगरा हुई, आठ साल आगरा में रहकर जोन की सेवा का अच्छा अवसर बाबा ने दिया और फिर आगरा से आबू ट्रांसफर हो गए। एक ब्रह्मा कुमार का तो एक ही लक्ष्य होता है कि कैसे मधुबन निवासी बन जाए, और जब आपकी ऑफिशियल ड्यूटी में ट्रांसफर हो जाए तो कितनी खुशी होती होगी। और यहां आकर के यहीं से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर 1984 से मधुबन में समर्पित हैं, 30 वर्ष हो गए और ऐसा लगता है कि जैसे 30 सेकंड की तरह उड़ गए हो। ऐसा अतिंद्रिय सुख का हमेशा यह अनुभव होता रहता है। ये भी एक बहुत बड़ा भाग्य कि बाबा ने मधुबन निवासी बनाया और मधुबन में रह करके सारे विश्व की सेवा करने का बड़ा सुखद अवसर बाबा देता है। और मधुबन तो फिर भगवान की खास धरनी है, इसलिए हर साल आप लोग आते हैं मिलने के लिए। तो एक बार अचानक हम लोग बैठे हुए थे आंगन में, एक मीटिंग चल रही थी, छोटी मीटिंग में मुझे आसाम से आने का अवसर परदादी के द्वारा ही दिया गया था। जब मैं 3 साल का था ज्ञान में, तो परदादी कहती 1974 की बात है ये, तो परदादी कहती चलो अशोक मधुबन मीटिंग है बड़े भाई बहनों की चलो। उससे मैंने कहा दादी मैं कौन सा बड़ा भाई बहनों में आता हूँ, मैं तो 3 साल का जिज्ञासु हूँ केवल। कहीं जब परदादी कहती है तो फिर कुछ बोला नहीं जाता कि जो आ गया। बाद में तो बस ये सर करने का अभ्यास होता है। तो दादी के साथ आए और पहले ही 74 में जो छोटी मीटिंग थी, जो अभी जिसे हम कहते हैं बड़े हमारे वरिष्ठ भाई बहनों की मीटिंग होती है, तो पिछले 40 साल से उस मीटिंग में भी आने का अवसर मिलता है। तो सब बड़ों से मुलाकात होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और एक बार वो मीटिंग चल रही थी यहाँ और मधुबन के आंगन में हम लोग ब्रेक में आए, तो हमारी दादी चंद्रमणि बैठी हुई थी। तो दादी चंद्रमणि पूछती, हाँ वैसे आजकल क्या पुरुषार्थ चल रहा है तुम्हारा? हम लोग आपस में बहुत सहायता से दादियों के साथ रुद्रान करने का अवसर मिलता है, मधुबन का ये लाभ है। उनका दादी, अभी बाबा ने कहा ना कि वतन में ग्लोब विमर्श करो और पांचों खंडों की सेवा करो, तो तुम सुबह सुबह अमृत वेले ग्लोब को विमर्श कर लेते हो कि क्यों नहीं दादी? तो बहुत आसान काम है, तो एयरफोर्स में रहा हूँ, वैसे आसमान से जमीन देखने की आदत है और ग्लोब तो हमारे सामने बहुत क्लियर है। मैं तो पांचों खंडों को बहुत अच्छी तरह से बाबा गोदी में बैठ के और बड़े प्यार से अमेरिका को, यूरोप निवासियों को, अफ्रीका को, एशिया के आत्माओं को, ऑस्ट्रेलिया की आत्माओं को बहुत प्यार से योगदान करते हैं और सबके चेहरे ऐसे खिले हुए दिखाई देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा तो तू ग्लोब की सेवा करना शुरू किया तुमने, बहुत अच्छा बच्चा है, तू जरूर विदेश जाएगा। अब दादियों के मुख से वरदान निकलता है तो देखने वाली बात होती। मीटिंग ब्रेक पूरा हुआ, 10:30 बजे हम लोग वापिस मीटिंग में पहुंचे और दादी प्रकाशमणि जी बोली कि भाई देखो एक निमंत्रण आया है दादी को, स्वामी विवेकानंद को 100 वर्ष हुए हैं विदेश गए हुए। 1893 में स्वामी विवेकानंद विदेश गए थे और शिकागो में उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस की थी और हिंदू धर्म का सबसे सुंदर प्रचार हुआ था। उसकी शुरुआत उन्होंने ऐसे की, उसका टेस्ट लेने के लिए उन्होंने सब धार्मिक पुस्तकें रखी थी, उसके सबसे नीचे गीता रख दी और किसी ने कहा कि देखो विवेकानंद ये हमारे सब धर्मों की पुस्तकें कितनी सुंदर लग रही हैं, अब तुम्हारी हिंदू धर्म की गीता पता कहाँ? सबसे नीचे। तो बड़े प्यार से विवेकानंद जी मुस्कुराए, बिल्कुल उपयुक्त स्थान दिया है आपने हमारी गीता को। तो वो कैसे? कि देखिए फाउंडेशन में आपने गीता को रखा है, इसी से सब धर्मों की उत्पत्ति हुई है। तो ये होती है विद्वानों की विद्वता, जिससे वो हर चीज को एक ऐसा सशक्त रूप दे देते हैं कि सामने वाला एकदम प्रभावित हो जाता है। और सचमुच ही गीता का ज्ञान सच्चा ज्ञान है, जिससे फिर दूसरे धर्मों की बात में उत्पत्ति होती है। अब तो बाबा हमें गीता ज्ञान दे रहे हैं, और फिर सत्युग त्रेता के बाद इससे तो सत्युग त्रेता की निर्माणता होगी, देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, फिर बाद में डाल डालियां निकलेंगी। तो बोला तो उसने बिल्कुल ठीक, और सबको बहुत अच्छा भी लगा। और सचमुच ही वहां मुझे ऐसा लगता था कि जहां स्वामी विवेकानंद गए वहां तो जरूर जाना चाहिए। तो दादी जी को 1993 में पहली पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हुई थी। 400 से भी अधिक धर्म है आजकल संसार में, हम तो 4-5 धर्म ही मानते थे, लेकिन सबकी इतनी इतनी डालियां बन गई हैं छोटी छोटी कि 400 से अधिक धर्म है, और 4000 लोग, 4000 धार्मिक नेताओं को अमेरिका में बुलाया गया था, और दादी जी को प्रिजाइड करने के लिए उसमें निमंत्रण मिला था। तो दादी को प्रिजाइड करने के लिए बुला रहे हैं वहां। पहले तो दादी पूछती है कि दादी जाए, सबको सारे वर्ष भाई बहन, हाँ दादी जरूर जाइए, सारे विश्व की धर्मात्माएं आएंगी, उनके बीच में आप बाबा का संदेश देंगी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो फिर उसने कहा अच्छा भाई एक भाई मुझे साथ चाहिए, दादी अकेली कैसे, दादी ऐसे कभी नहीं कहती कि मैंने जाना है, दादी जाए जैसे दादी से दादी अलग हो, ऐसा साक्षी भाव मैंने किसी मनुष्य आत्मा का आज तक नहीं देखा। सब लोग हम ऐसे ही बोलते हैं, मैं वहां गया, वहां ऐसा हुआ, मैंने वो देखा, ऐसे बोलते हैं ना सब। दादी ने आज तक ये कभी नहीं कहा कि मैं अमेरिका गई, मैंने वहां जाकर ऐसा देखा, दादी अमेरिका गई, वहां ऐसा ऐसा हुआ, हाँ मोहिनी बताओ क्या सीन था वहां, तब भी दादी के क्या दादी जाए मैं जाऊं, ऐसा दादी कभी नहीं बोलती, यानी अपने से भी साक्षी भाव रखती थी, ऐसी थी हमारी बड़ी दादी। तो दादी तो जाएगी, एक भाई साथ जाना चाहिए, कौन भाई जाएगा, तो दादी ऐसे देख रही थी, तो अचानक हमारी तो दृष्टि, तुम चलोगे अशोक, दादी जैसी आपकी आ गया। देखिए बाहर आए हम ब्रेक में 10 मिनट पहले, और बाबा की श्रीमत मानकर सुक्ष्मतन में बैठ के ग्लोब को इमर्ज करके उसको योगदान देने का अभ्यास शुरू किया। ये तो स्वाभाविक है, जो बाबा कहते हैं हम करते ही हैं। लेकिन दादी चंद्रमणि के मुखारविंद से आशीर्वाद निकलता है, और 10 मिनट के अंदर ही हम अंदर हॉल में जाके बैठते हैं, ऐसे कॉन्फ्रेंस हॉल में, हिस्ट्री हॉल में मीटिंग चल रही थी, और उसी समय विदेश जाने का अवसर मिल जाता है, दादियों का आशीर्वाद है। और जब जाने की बात हुई और मैं बाहर निकला, एक बहन बैठी हुई थी, उसका नाम प्रतिमा था, कि अशोक भाई मैंने सुना आप अमेरिका जा रहे हैं, मैंने कहा तेरे पास समाचार कहां से आ गया, कि मेरे पास अब समाचार आ जाता है, मुझे एक महीना पहले आपको बुलाना है। मैंने कहा वो किस लिए, कि मैं अकेली हूं भाई, मेरे पास कोई हैंड्स नहीं है, मुझे हैंड्स चाहिए, उस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज तो मैंने किया, 3 साल से मैं वहां जाती हूं, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं है वहां, इसलिए मदद के लिए चलिए आप एक महीना पहले, चलो एक महीना पहले दादी को पूछ लो, दादी से मैंने पूछ लिया, आपको एक महीना पहले आना, ठीक है। तो एक महीना पहले शिकागो जाने की बात हुई। उसके बाद खाना खाने के लिए गए, एक डॉर्थी बहन करके अमेरिकन बहन है, टेम्पा एक सेंटर है हमारा बहुत अच्छा, भारतवर्ष में सब जगह म्यूजियम है, विदेश में कहीं म्यूजियम नहीं था। तो जिस भाई ने हमारा ज्ञान सरोवर का जो आर्ट गैलरी है वो बनाई है, उसने वहां म्यूजियम बनाया था। तो वहां की बहन का नाम डॉर्थी बहन था, हम लोग उसे दादी बड़े प्यार से द्रौपदी कहती थी, डॉर्थी बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो द्रौपदी उसका नाम रखा हुआ था। तो जैसे खाना खाने के लिए बैठे, तो उसके साथ हम एक बार जयपुर गए थे, तो ऐसी प्यार से आपको थी, अशोक भाई यू आर कमिंग टू अमेरिका, मैंने कहा इसको कैसे मालूम पड़ गया, नहीं ऐसे ना मधुबन की बात फटाफट चारों तरफ फैल जाती है। तो मैंने कहा यस आई वॉन्ट ए गिफ्ट फ्रॉम यू, मुझे आपसे एक सौगात चाहिए। तो मैं उसे बड़े प्यार से देख रहा कि हम लोग मधुबन निवासियों की आदत क्या होती है कि एक छोटा सा बैग लेके जाते हैं, हाथ में थैला हो, थोड़ा ब्रीफकेस होता है, कंधे पर एक छोटा सा बैग होता है, उसमें टोलियां होती हैं, और जहां भी सेंटर पर जाते हैं टोली देते हैं, लौटते समय बहनें सौगात देती हैं, भर के ले आते हैं और आकर मुन्नी बहन जी को दे देते हैं, ऐसा हमारा मधुबन का रूटीन है। तो मैंने कहा ये अच्छी बहन है, टीचर बहन, ये तो सौगात मांग रही है, अरे मधुबन वालों को सौगात दी जाती है, ली थोड़ी जाती है, पर उसे मैं क्या समझाऊं, विदेश की बहन थी। मैंने कहा यस व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको, कि आपको मालूम है एक जॉन भाई करके यहाँ आया करते थे अमेरिका से। मैंने कहा जानता हूँ मैं, क्योंकि हम लोग ट्रांसलेशन की ड्यूटी करते थे, तो ट्रांसलेशन में सभी विदेशियों के बहुत समीपता हो जाती है, میں نے کہا کہتی وہ دو سال سے نہیں آیا ہے. میں نے کہا ہاں یہ بھی میں نے نوٹ کیا پچھلے سال تو نہیں آیا. ان دنوں بہت تھوڑے ودیشی آتے تھے تو پتہ لگ جاتا تھا کہ اس کو مایا کھا گئی ہے. میں نے دیکھا اسے تو پھر میں کیا کروں, مجھے میرا جان واپس چاہیے. ایسے بولتی I want my John back to the center and I want that gift from you. اب مدھو نواسی تو فوج میں ویسے بھی رہے, ہاں بھی اثر کرتے تھے, یہاں بھی ہاں جی کرتے ہیں. تم نے ہاتھ اٹھا دیا دادا ٹھیک ہے آپ کا بھائی آپ کو مل جائے گا. کہہ تو بیٹھا میں, جیسے باہر آئے مجھے لگے کہ ارے تم ہاں تو کرائے ہو اب تم کیسے لاؤ گے جان کو. امریکہ کبھی دیکھا نہیں, جیسے یہاں بھارت ہے تو بالکل نیچے امریکہ ہے پاتال لوک کی طرح. کہاں امریکہ وہاں کون سا ٹیمپا شہر ہوگا مجھے تو کچھ معلوم نہیں تھا, لیکن نہ کرنے کی عادت نہیں ہوتی. تو نکل گیا اور میں بابا کمرے میں آ کے بیٹھا. میں نے کہا بابا اب میرے مکھ سے نکل تو گیا ہے کہ تمہارا جان واپس آ جائے گا, مگر آئے گا کیسے یہ تو بتائیے. تو بابا کمرے میں بیٹھتے ہیں ہم تو بہت سندر روحان کر سکتے ہیں, اب یہ ہمارے بابا کے روم کی وشیشتا ہے. تو بڑے پیار سے بابا مسکراتے ہوئے بولتا ہے پتا ہے اس نے آپ سے ایسی کیوں آستھا رکھی. میں نے کہا کیوں, کہ تم مدھوبن نواسی ہو بچے اور اس کو مدھوبن پر آستھا ہے اس لیے اس نے آپ کو ایسا کہہ دیا. ٹیچر ہے اس کا اسٹوڈینٹ ہے, ایسے تھوڑی کہ میں اور امریکہ میں رہتی ہے وہ اسے سب پتا ہے. پھر بھی اس نے آپ کو کیوں ایسا کہا, کیونکہ اس کو مدھوبن نواسی میں آستھا ہے اور مدھوبن نواسی میں آستھا اس لیے ہے کہ مدھوبن بابا کا اپنا گھر ہے, بابا کی چرتر بھومی ہے, اسی لیے اس نے آپ کو کہا. تو میں نے کہا پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے, آپ کی وجہ سے اس نے ہم نے آستھا رکھی, اور لڑکے کو بھی آپ ہی لے آنا. تو کیا تم لا سکتے ہو کیا, پیار سے پوچھتا ہوا. میں نے کہا نہیں میں تو نہیں لا سکتا. تو بابا ہی لائے گا آپ چنتا مت کرو, لیکن نمت پرشارتھ تو کرنا پڑے نا بچے. مطلب مجھے کیا کرنا ہے. نہیں بابا روز صبح بیٹھتے ہو نا, آپ نے دادی سے کہا تھا نا کہ میں گلوب پر سیوا گلوب کو ومرش کر کے سیوا کرتا ہوں, تو روز امرت ویلا گلوب کو ایسے ومرش کرو جیسے سیوا کرتے ویسے ہی کرو. امرت ویلا پورا ہوتے ہی پانچ منٹ امریکہ میں اس گلوب کو تھوڑا روک دینا, اور امریکہ میں امریکہ کو ومرش کر کے, آپ اس بھائی کی شکل جانتے ہو, میں وہ تو جانتا ہوں میرا دوست ہے وہ, تو اس کو ایمرج کرنا جان کو, اور بابا کو کہنا دیکھو بابا کہہ رہا ہے کہ بابا کو کہنا کہ اس بچے کو واپس لاؤ. بابا ہی کہہ رہا ہے کہ بولنا بابا کو کہ اس بچے کو واپس لاؤ. ٹھیک ہے جو آ گیا. تو روز صبح امرت ویلے بیٹھتے تھے اور یوگ کے بعد بابا کو بولتے تھے بابا امریکہ کو ایمرج کرنا, اس میں ایک ٹیمپا ٹاؤن ایسی امیجنیشن ہی تھی ساری, اور اس بھائی کا فیس ایمرج کرنا اور بابا اس بچے کو واپس لاؤ, بابا اس بچے کو واپس لاؤ, ایسا کہہ دیتا تھا. شام کو بابا کی پہاڑی پہ جاتے تھے, مجھے تھوڑا شک رہتا تھا اندر کی پتہ نہیں وائبریشن وہاں پہنچ رہی ہے کیا, اتنا نیچے پاتال لوک میں ہے امریکہ وائبریشن پہنچتی ہوگی. پھر اوپر وطن میں دیکھنا بابا کو, جیسے ایک سیٹلائٹ تو ہر طرف چلی جاتی ہے, تو یہاں سے بابا کی پہاڑی پر بیٹھنے تھوڑا اونچائی سے تو ضرور وائبریشن پہنچتی ہوگی. پھر وہاں بیٹھ کے یوگ کرنا, پھر بابا کو بولنا کہ بابا اس جان بچے کو واپس لیا اس بہن کی اچھا ہے, اور بابا مسکراتا دکھائی دیتا تھا ہمیشہ. پندرہ دن گزرے اور امریکہ جانے کا سمے آ گیا, اور جا کر امریکہ پہنچے, ٹیمپا پہنچے, ٹیمپا میں ایئرپورٹ سے باہر آئے, اور جیسے ہی باہر نکلا میں تو امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں کی سیکیورٹی تھوڑی ٹائٹ تو بہت ہے لیکن انکاگنیٹو سیکیورٹی ہوتی ہے, زیادہ یونیفارم پہنے لوگ گھومتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے ہیں, لیکن آپ کو ہوائی جہاز تک کوئی جانے دیتے ہیں. یعنی آپ ہمارے دیش میں تو کیا کہ باہر ہوائی جہاز سے نکلو پھر باہر آؤ تب جا کر لوگوں کو مل سکتے ہو, اس میں لوگ جا سکتے ہیں اندر, اور جیسے ہوائی جہاز سے آپ باہر آتے ہیں تو آپ کو باہر نکلتے ہی یعنی اندر پرویش کرتے ہی آپ اس سے مل سکتے ہیں. تو ایک اندر بھائی آیا ہوا تھا, میں دیکھا دھیان سے تو جان ہی ہے وہ, پتلا دبلا سا بھائی تھا. تو جیسے میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا ہائے جان, ہائے اشوک, اسے گلے ملا اور بہت خوش ہو کے اور ساتھ لے کے آیا. اب میں نے دیکھا دیکھو آ تو گیا جان, ہوائی اڈے پر تو پہنچا ہے, شکر ہے بھگوان کا. باہر آئے تھے گاڑی میں بٹھایا اس نے, اور گاڑی میں بٹھا کر کے راستے میں بات کرتا بڑے پیار سے, آپ کیسے ہیں. میں نے کہا جان بھائی آپ کیسے ہو, کیسا انبھو ہے آپ کا, کیسا چل رہا ہے. اس کو میں نے یہ نہیں جتایا کہ میں جانتا ہوں تم دو سال سے نہیں آ رہے ہو, خود ہی وہ بولتا ہے یو نو برادر شوک امریکہ ان امریکہ مایا از ویری اسٹرینج, ہمارے امریکہ کی مایا بڑی وچتر ہے. تو میں نے کیا کیسے, you know I have been eaten away by Maya for last 2 years, مجھے دو سال سے مایا کھا گئی, خود ہی کہہ رہا ہوں. میں سن رہا بڑے پیار سے, پھر میں دو سال سے سینٹر ہی نہیں گیا بالکل. پھر میں پیار سے مسکراتا رہا دیکھتا رہا. میں نے کہا اور کچھ, बट स्ट्रेंजर हैज बीन द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2 वीक्स। अब देखिए उसके मुख से कैसे बाबा निकलवाता है। वहां बाबा युक्ति देता है कि उसको इमर्ज करके और बाबा को बोलो कि बच्चा वापस आए, और हम 15 दिन से वो मधुबन में कर रहे हैं, और वहां वो गाड़ी में बैठा हुआ हमसे बात कर रहा है और कह रहा है कि स्ट्रेंजर इज द एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 2 वीक्स। वो 2 साल की बात छोड़िए, मुझे माया खा गई, मैं नहीं गया सेंटर, अलग बात है, लेकिन पिछले 2 सप्ताह का अनुभव बहुत विचित्र है। तो मेरे मन में थोड़ा खटका कि देखेंगे क्या करता है अभी। तो कहता है पिछले 2 हफ्ते से बाबा रोज अमृत वेले मेरे कमरे में आता है और आकर के मेरी खटिया हिलाता है और कहता है चाइल्ड कम बैक, अंग्रेजी में बोलते हैं चाइल्ड कम बैक, बच्चे वापस आओ, बच्चे वापस आओ। देखिए कैसा बाबा अपना कार्य कराता है। मधुबन निवासी बनने का सुख समझ लीजिए, या ये समझ लीजिए कि दूसरों के लिए सेवा करने का जब लक्ष्य होता है तो आपके सभी काम भगवान पूरे कर देता है। और इतना अंदर से कितनी हमें खुशी हुई होगी आप सोच सकते हैं। आज वो भी समर्पित है, डॉर्थी बहन तो है ही, दोनों जने मिलकर अमेरिका का पीस विलेज करके एक रिट्रीट सेंटर है, 300 एकड़ की जमीन में फैला हुआ, दुनिया में सबसे बड़ा बाबा का जो घर है वो अमेरिका में है। हमारा मधुबन भी 60 एकड़ में ही है, वो 300 एकड़ की जमीन है और उसमें बहुत सुंदर एक बंगलो है, बहुत अच्छे झरने बहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। मैं कभी गया नहीं रिट्रीट सेंटर में, लेकिन ऐसा रिट्रीट सेंटर है। उसकी वो दोनों भाई बहन, डॉर्थी बहन और जॉन भाई, उसकी टोटल संभाल करते हैं। डॉक्टर कला बहन है हमारी अमेरिका की, ये 3 जने मिलकर निमित्त हैं दुनिया के सबसे बड़े सेवा केंद्र को चलाने के। तो ऐसी बाबा कमाल करके दिखाता है, अगर आप संपूर्ण रूप से बाबा के प्रति समर्पित होकर दूसरों की सेवा करने का लक्ष्य रखते हैं और हांजी का पाठ पक्का रखें, तो आपकी सभी मनोकामनाएं स्वयं भगवान पूरी करता रहता है, और हमारी नहीं सबकी मनोकामनाएं पूरी करता है, इसीलिए तो भगवान कहा जाता है। और जो सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करे, सारे विश्व के कल्याण का कार्य करता हो, उसे ही भगवान कहते हैं। मनुष्य आत्मा में और परमात्मा में क्या फर्क है? मनुष्य आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है? बोलिए बोलिए, बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ। हम सभी मनुष्य आत्मा है और परमात्मा को तो हम सब मिले, वैलेंटाइन डे मनाया हमने भगवान से, क्या फर्क है जी? क्या बोला माता ने? जन्म मरण से रहित है, हम जन्म मरण में आते हैं, और व्यवहार में क्या फर्क है? आम संसार के मनुष्यों को आप देखते हैं ना, और बाबा को भी आपने देखा है, अपनी बात छोड़ दीजिए, बाबा को भी आप सबने देखा और मनुष्य आत्मा को भी आपने देखा, बाहर संसार से तो आए ही हैं हम सब। कैसे होते हैं मनुष्य? क्या बोला सर? रिपीट। सबसे बड़ी बात है मनुष्यों को देखिए, सभी मनुष्य जो हैं, ब्राह्मणों की बात नहीं मैं कर रहा, हम तो भगवान समान बन रहे हैं। मनुष्य आत्मा में क्या विशेषता होती है? कुछ लोगों को प्यार करते हैं, अटैच होते हैं कुछ से, और कुछ लोगों से नफरत करते हैं, और संसार के अधिकतर लोगों के बारे में कोई इंसान सोचता नहीं, अपनों से प्यार करता है, जो उसको प्यार नहीं करते या उसे झगड़ा कर लेते हैं उससे नफरत करता है, और 99% लोगों के बारे में सोचता ही नहीं। वी लव सम, वी हेट सम पीपल, और एटलीस्ट डिसलाइक सम पीपल, एंड वी आर नॉट कंसर्न अबाउट 99% पीपल ऑन दिस अर्थ। और परमात्मा क्या विशेषता है? ही लव्स ऑल, ही हेट्स नन, एंड ही इज कंसर्न अबाउट ईच एंड एवरी वन ऑन दिस अर्थ। परमात्मा ही केवल एक ऐसी शक्ति है जो सबको प्यार करता है एक जैसा, किसी से नफरत का सवाल ही नहीं, और सभी मनुष्य आत्माओं के कल्याण के बारे में सोचता है। और कैसे अपने मुख से कहता है, देखो पहले भारत कल्याणकारी कहता था बाबा, बाबा भारत कल्याणकारी था क्योंकि भारत में आया, और मेरे विदेश के बच्चों ने विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया है। निमित्त भाव देखिए, करण करावन हाथ तो खुद ही है, विदेश के बच्चों को उसी ने अपनी शक्ति से जन्म दिया, लेकिन विदेश के बच्चों को उठाता कितना जिगर से, आप बच्चों ने मुझे विश्व कल्याणकारी का, भगवान को विश्व कल्याणकारी का आपने टाइटल दिया, मुझे डबल प्यार है विदेश, डबल विदेशी बच्चों से। तो हरेक की विशेषता को देखकर उसका गुणगान करना, उसको सशक्त करना, उसका पूरा ख्याल रखना, चाहे कोई ज्ञान में है या नहीं है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा हर एक आत्मा को देता है। हम लोग जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी लोग नहीं आएंगे, लेकिन मुक्ति तो सबको मिलेगी। ऐसा ध्यान रखने वाला केवल एक भगवान ही है, या हम ब्राह्मण बच्चे हैं जो बाप समान बन रहे हैं। आप भी उसी के कार्य में निमग्न हैं। हर एक आत्मा को कुछ न कुछ कणा दाना ज्ञान का आप हमेशा देते रहते हैं और देते रहें, उनका भला करते रहें, और सबको कम से कम मुक्ति का तो वर्षा दे ही सकते हैं आप। किसी को शांति मिलेगी, जो मुक्ति में धाम में जाने वाले वो कैसे होते हैं, उनको शांति बहुत अच्छी लगती है, वो लास्ट में आते हैं बच्चे। और जो परम धाम में जाकर के सुख धाम में आने वाले हैं, उनको सुख आनंद अच्छा लगता है, उनको ईश्वरी नशा होता है कि मुझे जाकर लक्ष्मी नारायण बनना है। तो ऐसे हरेक की सेवा करने का, सारे विश्व की आत्माओं की सेवा करने का हमें अवसर मिला है। और जब अपना ना सोचकर दूसरों की सेवा में जुट जाएंगे, गीत सुनाया ना भक्ति का, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। बाबा कहते हैं कि निर्विघ्न बनो और निर्विघ्न बनाओ। प्रतिज्ञा कराई ना, हाथ खड़ा किया ना सबने अच्छी तरह से, बार 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 भगवान ने खड़ा कराया हाथ। तो कैसे करेंगे, दूसरों की सेवा में जुटे रहो, अपनी चिंता छोड़ दो। मुझे सर्व आत्माओं को या अपने आसपास वालों को, जैसे पिछली वाणी बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा का उलहना ना रह जाए कि मेरा बाप आया, आपको पता था और आपने मुझे बताया ही नहीं, ऐसा उलहना ना रह जाए। यानी जो भी आपके आसपास आपके संपर्क वाले जानकार लोग हैं, सबको बाबा का संदेश देने में जुटे रहे आप। फिर देखिए, आपको तो विघ्न आने का प्रश्न ही नहीं। जब दूसरों का विघ्न दूर करने का कार्य आप करेंगे तो आपके अपने विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। इसलिए श्रेष्ठ संकल्प करने से, जैसे कहते हैं, व्यर्थ संकल्प आप ही समाप्त हो जाते हैं, नहीं तो व्यर्थ संकल्प आप भगाते रहिए, कभी नहीं भागेंगे। और श्रेष्ठ संकल्प करना शुरू कर दीजिए तो व्यर्थ समाप्त हो जाता है। ऐसे ही दूसरों के विघ्न दूर करने की सेवा में लगेंगे तो आपके विघ्न आप ही समाप्त हो जाएंगे। और जो आपने बाबा के सामने एक हाथ दो दो हाथ उठाए हैं, वो आपको बार 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 वो स्मृति आती रहेगी और आप खुशी में नाचते रहेंगे। तो आप सभी भाई बहने सदा खुशी में नाचते रहें। बाबा के साथ जो ये वैलेंटाइन डे मनाया है, इसको बार बार स्मृति में लाते रहें और देखिए कैसा आपको खुशी का नशा चढ़ा रहेगा, खुद भी खुशनुमा रहेंगे, खुश नसीब बनकर दूसरों को भी खुश नसीब बनाते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को विराम देते हैं।